ओम शांति। भट्टी के तीसरे दिन आज हमारे बीच उपस्थित हैं बाबा के अनमोल रतन आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी ललित भाई जी। आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, आपने डिस्प्यूट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट लिया हुआ है, नेचुरोपैथी और योगा में आपको विशेष रुचि है, आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखते हैं, आपको कविता लेखन में रुचि है, वास्तु में भी है, आप काउंसलिंग करते हैं, युवा और दिव्यांग जनों की भी खूब सेवाएं आपने की हुई है, फाइनेंस फ्रेटर्निटी वित्तीय भाईचारा में अभी आपने नया विंग भी बनाया है, इसके द्वारा फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों की आप सेवाएं करते हैं, आपने बहुत अच्छे गीत भी बनाए हैं, भोग का गीत आप सभी ने सुना होगा, बहुत प्यारा सा गीत है, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, सदा स्वस्थ जीवन जिसका प्रकाशन 7 भाषाओं में हुआ है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सुगंधित पुष्प, विभिन्न पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं, युवा बने शांति दूत, स्वर्णिम प्रभात और टच द लाइट जैसे पुस्तकों को लिखने में भी आपका सहयोग रहा है। आप 1993 में 21 वर्ष की आयु में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और बाबा की सेवाओं से जुड़े रहे और 97 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी हैं और भी जो ट्रस्ट हैं REF राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन वगैरह, तो उन सब के भी आप ट्रस्टी और सेक्रेटरी हैं। आपने मेडिटेशन और आध्यात्मिक विषयों में देश विदेश में बहुतों की सेवा की अपने व्याख्यान के द्वारा, अकाउंटिंग इनकम टैक्स GST बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आप टीचर्स बहनों को भी शांतिवन में ट्रेंड करते रहते हैं, खुश राजे सीनियर सिटीजन होम के आप प्रबंधक हैं, रेडियो साबरमती के क्रिएटर हैं, दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना में भी आपको बहुत रुचि है, यूथ की सेवा में स्पेशल आपने लेटर टू गॉड जो 3000 फीट लंबा पत्र लिखा गया था वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है और जी हाँ, तो यही कहूंगी। देखिए, भगवान के लिए तो हम कहते हैं वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, पर आदरणीय भाई जी आप हाथों में रजिस्टर, दिल में भगवान का नाम होता है आपके, हर कर्म में झलकता सेवा का पैगाम होता है, लेखा केवल अंकों का नहीं नियत का भी होता है, हर कर्म का साक्षी तो परमात्मा ही होता है, जो ईमानदारी से सेवा का भार निभाते हैं वे भी यज्ञ में अमूल्य पुष्प ही चढ़ाते हैं। तो आज विषय है आदरणीय भाई साहब का संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अभी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपके संस्कार बदल जाए तो सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे, तो किस प्रकार से संसार बदलता है हम सुनेंगे आदरणीय भाई जी से।
ओम शांति। मैं अभी जब नीचे शांतिवन से यहां आ रहा था तो रास्ते में देखा दोनों तरफ कई पेड़ थे, कई कांटों के पेड़ भी थे, बबूल। आप भी कहीं कार से जाते होंगे, बस से, तो देखते होंगे कि रोड की तरफ बबूल के बहुत से पेड़, हजारों पेड़ दिखाई देते हैं। तो विचार चलता है कि वो बबूल के पेड़ कोई वहां बीज डालने गया होगा, उस जमीन को पहले ठीक की होगी, फिर बीज डाला होगा, फिर पानी डाला होगा, फिर वो उनको जीव जानवर से बचाया होगा, तब वो बड़े होंगे। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? अपने आप ही हो गया। और अपने घर पर हमको 10 फीट बाई 10 फीट का बगीचा बनाना है तो वो भी अपने आप हो जाएगा? क्यों, वो अपने आप हो गया तो ये अपने आप नहीं होगा? वहां बगीचा बनाना है तो पहले मिट्टी ठीक करनी पड़ेगी, मिट्टी लानी पड़ेगी, फिर नर्सरी में जाके पौधे लाएंगे, फिर एक बार पौधा रोप दिया फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। फिर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, कोई चिड़िया जानवर खा नहीं जाए वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो बगीचा तैयार होगा। ऐसे ही हमारी मन रूपी धरती पर कांटो रूपी विकारों, कमियों, अवगुणों का जंगल वो उगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक उग जाता है। क्या है कांटे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वैरभाव, घृणा, आलस्य, अलबेलापन अपने आप उग जाते हैं। आपने कहीं कोचिंग सेंटर देखा है जहां क्रोध कैसे किया जाता है? वो कोचिंग कराते हो, बच्चों को सिखाते हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई कोचिंग सेंटर होता है? नहीं होता है। वो अपने आप बच्चे सीख जाते हैं, ये सारे विकार सब अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि भी वातावरण ही ऐसा ही है, हर जगह से वो सीख जाते हैं। लेकिन मीठा कैसे बोले, प्रेम से कैसे रहें, इज्जत से कैसे बात करें, उसके लिए क्या करना पड़ता है? रोज सिखाना पड़ता है, रोज ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो कांटे हैं अवगुण और बगीचा है हमारे दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों का, जिसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। कांटों के जंगल में कोई जाना पसंद करता है या फूलों के बगीचों में जाना पसंद करता है? एक व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, वह अपमानजनक शब्द बोलता है, जोर जोर से बोलता है, वह आज इज्जत नहीं करता, इंसल्ट कर देता है, बिना बात के भी कुछ इंसल्ट कर देता है। अगर कोई आपको कहे कि ये एक थोड़ा सामान है, ये उसको देना है, आप जरा ये सामान उसको दे के आ जाइए, ऐसे व्यक्ति के पास आपको भेजते हैं, तो मन में क्या विचार चलता है? अरे ये कहां फंस गए? या कोई दूसरा जा रहा हो तो उसके साथ भेज देवे, मेरी तो इच्छा नहीं है वहां जाने की, किसी के साथ भेज देवे। लेकिन कोई व्यक्ति जो बहुत मीठा बोलता है, इज्जत करता है, दो बात ज्ञान की लेन देन करता है, बहुत प्रेममय स्वभाव है, उसके पास जाना हो तो हम कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं कैसे जावे उसके पास। और अगर गए भी तो थोड़ी देर और बैठे, ये इच्छा होती कि हम थोड़ी देर और इनके साथ बैठे, क्योंकि वो दिव्य गुण है। और आग भी लगती है तो कांटों के जंगल में आग लगती है। तो ये जो दिव्य गुण या ये विकार रूपी कांटे, ये कहीं न कहीं हम आत्मा में संस्कारों के रूप में रहते हैं। अब हम सब फूलों के बगीचे में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग क्या है? फूलों का बगीचा। तो हम सब किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? ये भट्टी किस लिए कर रहे हैं? फूलों के बगीचे में जाएं, चाहे वो अमृत वेले योग करते हैं, क्लासेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फूलों के बगीचे में जब हमें जाना है तो इस समय ये शरीर तो नहीं रहेगा, नई दुनिया में ये शरीर होगा नहीं होगा, ये शरीर तो छूट जाएगा सर। तो फिर यहां क्यों मेहनत करें, वहीं जाके कर लेंगे ना मेहनत, वहां वैसे भी नया शरीर मिलेगा। तो जो ये मेहनत कर रहे हैं अमृत वेला उठने की, क्लास की, ये सब ये वहीं कर लेंगे, वहीं जाके संस्कार बदल लेंगे, यहां क्या जरूरत है। यहां मेहनत करने की जरूरत है या वहां जाके कर लेंगे। यहां फूल बनेंगे तो वहां फूलों के बगीचे में जा सकेंगे, तो फूल तो यहीं बनना पड़ेगा हमें, यहां बनेंगे तो जाएंगे। और यहां बनने के लिए बाबा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। जैसे एक बागवान माली को रखता है कि पेड़ पौधों को कोई जानवर आके खा नहीं जाए, रक्षा करने के लिए माली को रखता है बागवान, ऐसे ही हम आत्माएं जब 7 दिन का कोर्स किया और संस्कार परिवर्तन की प्रोसेस शुरू की, कांटे से फूल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कोई माया कोई शैतान हमें खा नहीं जाए तो बाबा ने ये बहनों को निमित्त बनाया, सेंटर खोले और बहनों को मालिक के रूप में रखा, जो सदैव ध्यान रखती है हमारा कि कोई इनको माया कोई शैतान कोई रावण इनको खा नहीं जाए, इतना बाबा ध्यान रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्योंकि नए संसार में जाना है तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वो है संस्कार परिवर्तन की, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ज्ञान सुनना कोई डिफिकल्ट है, पहले तो आज से 50 साल पहले आपको मुरली सुननी है तो सेंटर पर ही जाना पड़ता था, घर के पास में नहीं होता था सेंटर, हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में जाके सेंटर पे जाना पड़े, ये स्थिति थी। और आज मुरली सुननी है तो कहां जाना पड़ता है, मोबाइल खोलो तो हर भाषा में ऑडियो वीडियो लिखत चित्र फिल्म सब आ जाती है मुरली का, इतना इजी हो गया, ज्ञान इजी हो गया। पहले दादियों के क्लास सुनने होते थे तो मधुबन आना पड़ता था, और आज दादियों के क्लास सुनना है तो बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, तो हम दादियों के क्लास कर सकते। योग करना भी सहज हो गया है, पहले तो फिल्मी गीतों पर थोड़ा योग का कोशिश करते थे ये सब, अभी तो कितने बाबा के सुंदर सुंदर गीत बने हैं, कमेंट्रीज बनी है, विधियां बनी है, तो आराम से हम योग भी कर सकते हैं। तो ये सब तो इजी हो गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संस्कार परिवर्तन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद अपने आप को चेक करो, जब ज्ञान में आए थे उस समय के जो संस्कार हैं, कोई कोई संस्कार तो थे उस समय, वो संस्कार अभी 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद संपूर्ण समाप्त हो गए हैं या अभी उनका कुछ अंश रहा हुआ है, और जो कुछ अंश है उसको जैसे ही हवा लगती है तो तो वो चिंगारी आग में भी बदल जाती है। सपोज किसी के गुस्से का संस्कार था पहले, इतने सालों योग से प्रयत्न किया, लेकिन अभी किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने काम बिगाड़ दिया, किसी ने अपमान कर दिया कुछ, तो क्या हो जाएगा? सामान्य रूप से तो वो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी तो वो जो कहीं अंश है वो वंश सहित आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इस पूरी प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कार परिवर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप देखो लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, अपने सामने लाओ, नजर के सामने, वहां पीछे लगा हुआ भी है, सबको पता है लक्ष्मी नारायण का फोटो। देखने में उनमें और हमारे में क्या फर्क है? देखने में क्या फर्क है? वो थोड़े फेयर हैं, थोड़ा बॉडी बैलेंस्ड है, उतना ही ना, बाकी तो ऐसे ही है, दो हाथ, आंख, नाक, कान, पैर, पेट, सब वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। फिर फर्क क्या है उनमें और हमारे में? फर्क क्या है? वो यहां भी कही, यहां प्लास्टिक सर्जरी करा देते, मुस्कुराते रहते। एक भाई थे, वो उसका चेहरा सदा रोना चेहरा था, कुछ भी बात हो उसका चेहरा ही ऐसा था, रोनी सूरत, सदा ही रोनी सूरत। लोग उसको टॉन्ट करते थे, उसके फ्रेंड्स कहते थे ये अच्छी बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, ये इतना अच्छा समाचार है, फिर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोले मेरी शक्ल ही ऐसी है। सब परेशान हो गए, सबके सुन सुन के वो परेशान हो गया, बोले अब कुछ चेंज करना पड़े, तो जाके उसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी, तो अब सदा मुस्कुराता चेहरा, सदा मुस्कुराता चेहरा। थोड़े समय बाद उसकी मां की डेथ हो गई, लोग घर पर सब बैठने आवे उसके लिए, उसका चेहरा मुस्कुराता चेहरा। तो ये ऐसा नहीं, चेहरा तो मुस्कुराहट तो है, लेकिन वो मुस्कुराहट किस बात की है? वो संस्कारों की है। वो जो दिव्य संस्कार है लक्ष्मी नारायण में, वो दिव्य संस्कार ही उन्हें हमारे से अलग बना रहे हैं। और वो दिव्य संस्कार बनाने के लिए उन्होंने संगम युग पर मेहनत की थी, मेहनत की थी। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है संस्कार परिवर्तन के, जैसे बताया लास्ट संडे की मुरली में भी संस्कार परिवर्तन के बारे में था, तो बहुत मेहनत की। कितनी मेहनत की आप सोचो, और मैं बता दूं एक फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला बता दूं संस्कार परिवर्तन का। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कार परिवर्तन ही, इस ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही हमारा सर्टिफिकेट कह सकते हैं उच्च पद प्राप्त करने का। अगर कोई संगम पे सर्टिफिकेट है तो क्या है? संस्कार परिवर्तन। हम कितने सेंटर खोले, कितने लोगों को हमने ध्यान दिया, कितनी सेवाओं के नई नई चीजें की, वो सब अच्छा है, लेकिन उच्च पद का आधार बनेगा व्यक्तिगत रूप से संस्कार परिवर्तन हमने कितना किया, वो उसका आधार है, यही सर्टिफिकेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसको लेने की विधि क्या है? क्या बहुत टफ विधि है? अगर फॉर्मूला प्राप्त हो गया तो एकदम इजी है, और अगर फॉर्मूला प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत टफ है। तो मैंने जो समझा और बाबा ने जो मुरलियों में बोला कि संस्कार परिवर्तन का इजीएस्ट वे यह है कि हम अपनी बुद्धि का समर्पण कर देवे। बुद्धि टोटल सरेंडर हो जाए बाबा। हम घर में रह रहे हैं, सेंटर पर रह रहे हैं, मधुबन में रह रहे हैं, छोटे से गांव में रह रहे हैं, वो सब इतना मायना नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम बुद्धि से समर्पित हैं, हमने निराकार शिव बाबा को यथार्थ पहचान कर अपनी डोरी कंप्लीट उसके हाथ में दे दी है। क्योंकि अगर हम अपने आप से प्रयास करेंगे तो बहुत प्रयासों के बाद भी संस्कार परिवर्तन हो नहीं पाएगा, जो आप सबका अनुभव है। अभी आपने सोचा कि 10, 20 साल 30 साल बाद भी संस्कार का वंश रह जाता है, अंश रह जाता है जो वंश पैदा कर देता है, तो हम अपने आप इसमें पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने सब कुछ बाबा को सौंप दिया, बुद्धि से संपूर्ण समर्पित हो गए, हमने अपनी बुद्धि नहीं चलाई और जैसा उसने कहा वैसा ही किया, तो ये बाबा की गारंटी है कि बाबा क्या बोला, बाबा गारंटी क्या दी है, मैं नैनों में पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा। किसको ले जाएगा पलकों पर बिठा के, जिन्होंने संस्कार परिवर्तन किए होंगे, बाकी तो बारती के रूप में साथ आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा चलो आज हमारे सामने तो देखने के लिए बाबा, मम्मा, दादियां, वरिष्ठ बहनें, वरिष्ठ भाई सब कुछ है, सेंटर है, मधुबन है, सब कुछ है, जिससे हमारा विश्वास जरा भी डगमग हो तो वापिस इन्हें देखकर हिम्मत आ जाती है और हम सब कर लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, क्योंकि इन सबको देखते हैं करते हुए। तो ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था, ब्रह्मा बाबा ने अपने संस्कार कैसे परिवर्तन किए, संपूर्ण समर्पण बुद्धि को, कैसी भी परिस्थिति आई। आप सबने स्टोरी तो सुनी है साकार बाबा की, सरकार के द्वारा वहां कितने पेपर आए कराची में, समाज के द्वारा कितने पेपर आए, मित्र संबंधियों के द्वारा कितने पेपर आए, धारणाओं को नहीं बोले वो उसके लिए कितने पेपर आए कि आप ये धारणा की बात नहीं करो। लेकिन बाबा ने सदा क्या कहा, शिव बाबा बोल के जाता है और जैसा वो शिव बाबा कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं। बाबा के सामने तो कोई रास्ता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, भारत जाके इतनी सेवा होनी है वो भी थोड़ी पता था बाबा को। ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि जहां पर ज्यादा इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक निश्चय, एक भरोसा, बुद्धि का संपूर्ण समर्पण। बाबा इतना होशियार था हर प्रकार से, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने लोगों से पहचान, सब कुछ, किसी का सहारा नहीं लिया बाबा ने, किसी का सहारा नहीं लिया, एक सहारा, बाकी सब सहारे छोड़ दिए बाबा ने। और तब वो परिवर्तन प्रोसेस हुई, तब वो संस्कार परिवर्तन हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोसेस में हम अपनी बुद्धि को संपूर्ण समर्पण कर दें। अच्छा, बाबा कैसे कहता है, हम क्या माने कि बाबा ने क्या कहा, कैसे बाबा का माने, बुद्धि का समर्पण करके कैसे माने, क्या करें। तो बाबा ने तो मुरलियां चलाई है, साकार मुरलियां है, अव्यक्त मुरलियां है, हमारे सबके पास है, रोज हम सुनते हैं, विश्वास करके आगे बढ़े उस पे। और निरंतरता। देखो बाबा ने 365 दिन ज्ञान योग के रखे, एक भी छुट्टी नहीं। ये मतलब आश्चर्य की बात है कि एक भी छुट्टी नहीं। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है दुनिया में कि जहां कभी छुट्टी नहीं होती हो? लेकिन यहां एक भी छुट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि इस संस्कार परिवर्तन की प्रोसेस में निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता नहीं हुई तो मन को बहाने मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं पांडव भवन की ही एक बात बताता हूं, बहुत वर्षों पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात। रतन मोहन दादी जी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। उस समय काला चश्मा पहनते थे, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था तो फिर काला चश्मा पहनते थे। दादी अहमदाबाद से ऑपरेशन करा के आई थी, मैं यहां अकाउंट सेवा में था। तो सवेरे हम क्लास में गए ओम शांति भवन में, तो शशि दीदी जी क्लास करा रहे थे और दादी जी सामने वाले सोफे पर बैठे थे। शशि दीदी जी ने कहा, दादी आप आ जाइए ऊपर बैठिए। बोले नहीं, मैं यहां सुनूंगी मुरली। वही काला चश्मा पहना था, दादी मुरली सुन रही थी। मुरली पूरी हुई, दादी अपनी ऑफिस में आई, यहां ऑफिस दादी का था डिस्पेंसरी के सामने। मेरे को कुछ काम था दादी से, तो मैं भी दादी के पास आया ऑफिस में। मैंने दादी को कहा, दादी जी आज जो मुरली चली है, ये मुरली, वो साकार मुरली थी, मैंने कहा ये मुरली आपने स्वयं ब्रह्मा बाबा के मुख से भी सुनी होगी। जब ओरिजिनल मुरली चली थी तब भी आपने बाबा के मुख से सुने, उसके बाद अभी हर 5 साल के बाद रिपीट हो रही है, तो आपने वो भी कितनी बार पढ़ी होगी इस मुरली को। आप तो स्वरूप भी बन चुके हो इस मुरली के, फिर भी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, काला चश्मा पहना हुआ है, फिर भी आप मुरली क्लास में आके सामने बैठे स्टूडेंट की तरह। इसके पीछे का क्या राज है? आप चाहो तो स्पीकर लगे हुए हैं तो अपनी रूम में भी बैठ के सुन लेते, अपनी ऑफिस में बैठ के भी सुन लेते, लेकिन खास मुरली क्लास में आके आप सामने बैठे और मुरली सुनी। तो दादी ने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत गहराई तक छू गया और वो मुझे हर पल प्रेरणा देता है वो उत्तर। दादी ने कहा कि ललित, ये जो मन है ना, ये बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, इसको बस कोई एक बहाना चाहिए। अगर मैंने आज बहाना किया होता कि आंखों का ऑपरेशन हुआ है, मैं आज क्लास में नहीं जाती हूं, रूम में ही सुन लेती हूं या ऑफिस में ही सुन लेती हूं, तो कल इसको दूसरा बहाना मिल जाएगा कि नहीं नहीं अभी तो डॉक्टर ने 5-7 दिन तो कहा ही है कि आपको आंख नहीं खोलनी, ज्यादा पढ़ना नहीं है। फिर बहाना मिलता है कि नहीं आज तो थोड़ा थोड़ा थकान जैसा हो रहा है। फिर बहाना मिलता है, आज तो थोड़ा फीवर जैसा कुछ लग रहा है। सोचा ये तो, फिर बहाना मिलता कि अच्छा ये मैं रूम में पढ़ लेती हूं। ऐसे करके इसको एक के बाद एक बहाने मिल जाते, इसलिए इसको कोई बहाना नहीं देना है। श्रीमत पर चलना है पूरा, इसको कोई बहाना नहीं देना है, नहीं तो ये बहाना देके हमारी जो निरंतरता है ना उसको वो तोड़ देगा। और जब एक बार निरंतर टूट जाएगी ना, फिर तो अच्छा चलो अभी गुरुवार गुरुवार जाया करेंगे क्लास में, अच्छा रविवार रविवार जाया करेंगे क्लास में, फिर कुछ न कुछ वो ब्रेक आना शुरू हो ही जाता है। जब एक बार खिड़की खोलते हैं ना, फिर दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए ना खिड़की खोलनी है ना दरवाजे खोलने, अपने नियमों में पाबंद रहना है, क्योंकि इस संस्कार परिवर्तन की ये लंबी प्रोसेस है। वो कांटे जैसे संस्कार जो कांटों का जंगल बना हुआ है मन अभी, उसे फूलों के बगीचे में परिवर्तन करना है। और किसी प्रकार की कोई गफलत में नहीं रहे, खुद को चेक कर ले। हम सतयुग में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करें जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। सभी बनना चाहते हैं, बनना ही है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का डिग्री वही मिलना है। पर हम चेक कर लेवे, गफलत में नहीं रहे, चेक कर लेवे कि क्या वो संस्कार परिवर्तन हो चुके हैं। अगर अभी शरीर छूटेगा, बाबा कई मूल्यों में नहीं कहते थे कि बाबा से कोई पूछे कि अभी शरीर छूटेगा तो क्या बनेंगे, तो अभी हम अपने आप से ही पूछ ले कि अगर अभी शरीर छूटा तो सारे कांटे जल गए हैं और दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन गया है, फूल हो गया है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, मुस्कुराहट, मधुरता, ये सब जीवन में आ गए हैं, प्रैक्टिकली आ गए हैं, तो उतना पद मिल जाएगा। ईमानदारी से अपना चेकिंग करना है। आ गए हैं, आप अपने सर्टिफिकेट खुद ही दे सकते हो, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। योग में तो यहां बैठे ही है ना, भट्टी में, योग में जरा चेकिंग कर ले वे आज कि सारे दिव्य गुण, लक्ष्मी नारायण मतलब सारे दिव्य गुण 100% संस्कार के रूप में हैं, दिव्य संस्कारों के रूप में हैं सारे दिव्य गुण और शक्तियां। तो क्या वो दिव्य गुण मेरे में भी सब उस लेवल पर आ गए हैं, लक्ष्मी नारायण के लेवल के आए हैं, या राजा के लेवल के आए हैं, या राज परिवार के लेवल के आए हैं, या साहूकार के लेवल के आए हैं, या राजमहल के दास दासी के लेवल पे आए हैं, किस लेवल के आए हैं हमारे में देवी गुण, वही मेरा पद होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, यहां कृपा तो होती नहीं है, तथास्तु, बाबा ऐसा बोल दे तथास्तु, ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसी कृपा तो नहीं होती है कि बाबा ने कृपा कर दी और सब जो है लक्ष्मी नारायण बन गए। कृपा का क्या अर्थ है? कर और पा, कृपा। कृपा का क्या है? कृपा, कर और पा। तो वो संस्कार परिवर्तन हमें ही करना है, हमें ही करना है। हो सकता है, नहीं हो सकता की बात नहीं है, हो सकता है। विधि है बाबा पर संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण समर्पण, तो बाबा की याद से वो परिवर्तन हो जाएगा। पर संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तो मन अपनी चलाएगा, हर बात में अपनी चलाएगा मन, और जब अपनी चलाएगा तो फिर परिवर्तन सहज नहीं होगा, वो डिफिकल्ट होगा। अच्छा, कैसे पता लगे कि अभी कितना परिवर्तन हुआ है? कोई यार्ड स्टिक तो हो, कोई पैमाना तो हो, कोई मापने का तरीका तो हो, कैसे पता लगे कि अभी कितना परिवर्तन हुआ है? संस्कार परिवर्तन, चलो हम कुछ मेथड देखते हैं, उससे शायद पता लग जाए। तो आत्मा के 7 गुण हैं, बाबा ने पहले ही पाठ में बताया ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, 7 गुण है आत्मा के। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो और ये आत्मा के संस्कार हो जाने चाहिए। तो हम चेक करें कि ये 7 गुण, आत्मा इन 7 गुण की स्थिति में कितना रहती है दिन भर में। आत्मिक स्थिति का मतलब उस स्थिति में रहना, जो आत्मा के गुण है उस स्थिति में रहना। एग्जाम्पल बताएं तो हम बहुत गर्मी से आ रहे हैं, बहुत गर्मी है बाहर, और हम कमरे में आए और अचानक हमें ठंडी हवा महसूस हुई कमरे में, तो हम क्या हमारे मन में विचार आएगा, वो ठंडी हवा कहां से आई? या तो पंखा चालू है या एसी चालू है, ऐसा ही विचार आएगा ना? या एसी बोलेगा कि मैं एसी चालू हूं, मैं ठंडी हवा दे रहा हूं, कहेगा वो? नहीं कहेगा, पर हमें पता लग जाएगा कैसे, ठंडी हवा अनुभव हुई उससे पता लग गया कि एसी चालू है। बाथरूम में गए, नल खोला, गर्म पानी आया, तो क्या हम सोचेंगे क्यों आया गर्म पानी, गीजर चालू है या ऊपर सोलार का जो हीटर रखा हुआ है वो चालू है? चीज वस्तु जो जिसके लिए बनी हुई है वो अगर उससे उस चीज का अनुभव हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, ये चालू है, वर्किंग है, ये उसका गुण धर्म बता रहा है। अब आत्मा के साथ गुण है और मैं आत्मिक स्थिति में हूं, वो संस्कार मैंने बदल दिए हैं, आत्मिक स्थिति वाले संस्कार हो गए हैं, तो उसका प्रूफ क्या है, वो सातों गुण हमारे द्वारा अनुभव होने चाहिए, हमें भी अनुभव होने चाहिए और हमारे साथ, हमारे सन्मुख, हमारे पास, हमारे नजदीक जो आते हैं उनको भी अनुभव होना चाहिए। जैसे उस गर्मी से आते ही कमरे में ठंडी हवा हमें तुरंत महसूस होती है, ऐसे कोई कितनी भी निराशा से, दुख से, तड़पते हुए, दर्द से, कराते हुए हमारे पास आए और हमारे दृष्टि से, हमारे दो बोल से वो तुरंत क्या हो जाए, उसका दुख दर्द घटने लग जाए, कम होने लग जाए, और दो पांच मिनट में तो वो एकदम से नॉर्मल हो जावे, तो क्या कहेंगे कि ये शांति, प्रेम, खुशी बह रही है। जैसे एसी से ठंडी हवा बह रही है, ऐसे हम आत्मा से क्या होना चाहिए, ये सब बहने चाहिए। जब ये बहने शुरू हो जाएंगे, क्या शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये जब बहने शुरू हो जाएंगे तब आप कह सकेंगे कि हाँ मैं अभी ये स्वरूप में हूं। जो कई कहते हैं ना, हमको कैसे पता हम आत्मिक स्वरूप में हैं? बाबा रोज मुरली में कहता है कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझ के बाप को याद करो, आत्मिक देही अभिमानी स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो। उसका प्रूफ क्या, ये प्रूफ है। तो संस्कार परिवर्तन, आप जो राजयोग का पहले दिन का जो लेसन किया है वो अपनी नजर के सामने लाओ। पहले दिन का लेसन आत्मा की तीन शक्तियां बताई, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करता है, विचार, विचार करने का कार्य करता है। बुद्धि क्या करती है, निर्णय करती है कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, ये निर्णय बुद्धि करती है। और निर्णय के आधार पर जो हम कर्म करते हैं वो क्या होता है, वो संस्कार बनता है। तो अब जब ज्ञान मिला हमें, स्वयं परमात्मा का संग मिला, तो हम श्रेष्ठ कर्म, कर्म केवल व्यवहार में आने का कर्म नहीं है, सोचना भी कर्म है, संकल्प करना भी कर्म है, बोल भी कर्म है, तो वो हम श्रेष्ठ करते जाएं। वो जितना श्रेष्ठ रिपीटेडली करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, उतना संस्कार हमारा वो पॉजिटिव बनता जाएगा। समस्या यहां आती है कि जानकारी होते हुए भी नहीं कर पाते, ये समस्या है कि पता है कि हाँ इससे नुकसान है। जैसे गुस्सा, सब जानते हैं गुस्से से नुकसान है, जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं गुस्से से नुकसान है। और कई बार निर्णय किया है, चाहे मुरली सुन के, चाहे किसी पे गुस्सा किया और फिर जो संबंध बिगड़ गए हैं, तो भी अनुभव से कि अभी गुस्सा नहीं करेंगे, अब अगर ऐसी कोई बात होगी ना तो हम वहां से छोड़ के चले जाएंगे दूसरी जगह थोड़ी देर के लिए ताकि गुस्सा नहीं हो, ऐसा कई बार निर्णय करते हैं। लेकिन फिर कोई परिस्थिति आई तो क्या होता है, आ जाता है। ये तो चलो सूक्ष्म हुआ, स्थूल में जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अब पहले तो सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता था स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, अब तो उसके चित्र भी लगाते हैं कि वो कैंसर से कैसी जवान हो जाती है, कैसे गाल हो जाते हैं, होठ कैसे हो जाते हैं, उसके बहुत खराब खराब चित्र लगे होते हैं जिनको देखकर ही लोग डर जाए कि भाई नहीं इससे कैंसर होगा, नहीं पिए। और मैं समझता हूं कि 100% लोगों को पता है कि इससे नुकसान है, और 50-60% तो छोड़ना भी चाहते होंगे सिगरेट कि भाई मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है सब, लेकिन होता क्या है, नहीं छोड़ पाते। मेरा एक फ्रेंड था, उसका संस्कार था सिगरेट पीने का, बहुत वर्षों पहले की बात है। फिर मैं इधर ब्रह्मा कुमारीज में आ गया, वो दुनिया में उन्नति किया उसने खूब, काफी वर्षों के बाद मिले तो मैंने सोचा छोड़ दिया होगा सिगरेट, लेकिन जब मिले बातचीत किया तो पता चला अभी भी सिगरेट पीता है। मैंने कहा तू पढ़ा लिखा, इतना पैसे वाला, इतना समझदार, इतना बड़ा इंडस्ट्री चला रहा है सब, तू सिगरेट जैसी चीज नहीं छोड़ सकता है। तो उसने कहा ललित सिगरेट छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 51 बार छोड़ी है। यही होता है प्रैक्टिकल में, संस्कार परिवर्तन, हम प्रयास करते रहते हैं लेकिन फिर वापिस वही पुराना, फिर वापिस वही पुराना संस्कार आ जाता है, छोड़ते हैं फिर आ जाता है, छोड़ता है फिर आ जाता है। लेकिन अगर ठप्पा लगाना है कि नहीं अब मुझे परिवर्तन, ये भट्टी से मुझे पावरफुल संकल्प लेना है कि अब लक्ष्मी नारायण जैसे संस्कार प्रैक्टिकल में मेरे जीवन में होने ही चाहिए, यही होने चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद तो करना नहीं है, वो तो प्रारब्ध है, पुरुषार्थ तो यहां है, तो यहां ही करना ही है मुझे पक्का, तो फिर संपूर्ण समर्पण बुद्धि। भगवान कह रहा है कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरे जीवन के कई अनुभव हैं कि भगवान भरोसे छोड़ दिया, भगवान पे निश्चय रखा, भगवान की श्रीमत पर चलते रहे तो सब कुछ वो संभाल लेता है। और हमारे जीवन में भी कई कैसे भी कड़े से कड़े संस्कार हो, वो परिवर्तन हो जाता है, बस हम एक बार प्रयोग करके देखें। और जो बाबा ने निरंतर का अभ्यास दिया है, प्रतिदिन की मुरली, प्रतिदिन के जो अलग अलग योगाभ्यास का है, जो धारणा पर अटेंशन देना है, और जो हमारा समय है वो सेवा में हमें सफल करना है, इधर उधर के बजाय, मोबाइल के बजाय, यहां सेवा में हमको अपना संकल्प, समय, एनर्जी सब सफल करनी है। तो ये जो बाबा के बताए हुए नॉर्मल जो सारी चीजें हैं उसको अगर हम एक्यूरेट करते रहे तो ये संस्कार जरूर परिवर्तन हो जाएगा। और ये इस जीवन का, जो ये अमूल्य जीवन मिला है संगम युग का, मनुष्य जीवन तो कई मिले हैं लेकिन ये संगम का जो अमूल्य जीवन मिला है, ये जीवन की सफलता किसमें है, संस्कार परिवर्तन में सफलता है। और जरूर से आज आप सभी चार्ट तो बना ही ले अपना खुद का, यहां कहीं कहीं लिखा भी होगा 36 जो देवी गुण है पूरे, वो सब लिखे होंगे देवी गुण संस्कार, तो वो अपना चार्ट चेक कर ले कि कितना परसेंटेज है। कई मियां मिठू बनते हैं, हाँ हाँ मैं तो परिवर्तन हो गया मैं तो, लेकिन वो नुकसान किसको करेगा? हमको ही करेगा, खुद को ही नुकसान करेगा। दूसरे को तो हम थोड़े समय के लिए उनके आंखों पर पट्टी भी बांध देंगे हम, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाएगा। ये जो बाजी मिली है कल्प कल्प की बाजी है, ऐसा चांस है क्या अपने पास कि इस जन्म में संस्कार परिवर्तन नहीं हुए तो कोई बात नहीं अगले जन्म में कर लेंगे, ऐसा चांस है अपने पास? है चांस? वो पढ़ने वाला लड़का बोर्ड का एग्जाम होता है या कुछ, तो एक साल फेल भी हो गया तो उसको दूसरे साल में चांस मिलेगा वापस पास होने का। लेकिन यहां इस संगम युग पर अगर हम संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो क्या होगा? एक कल्प का नुकसान होगा खाली, कल्प कल्प का नुकसान होगा। हर कल्प में यही रिपीट होने वाला है, इसलिए और सब चीजें हम छोड़ देवे बुद्धि से, बुद्धि एक बाबा को समर्पित करके जो बाबा के महावाक्य है वो प्रैक्टिकल जीवन में करते जाए और बाबा से शक्ति लेते जाए। रोज हम योग में बैठते हैं तो बाबा तो शक्ति देता ही है, तो बाबा से शक्ति लेवे, दृढ़ संकल्प करे। और आप देखो कितना भी कोई भी बात है, आप ये मधुवन परिवर्तन भूमि है, यहां आप दृढ़ संकल्प लेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे और वो चीज जीवन में हो जाएगी। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, बस वो दृढ़ संकल्प ले और वो हो जाएगा। तो ये एक सुंदर प्रोसेस है, इसमें न घबराने की जरूरत है लेकिन और खुश होने की जरूरत है। और इसका सर्टिफिकेट आपको मिलता जाएगा, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले, उन सबसे सर्टिफिकेट मिलता जाएगा जैसे जैसे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। जैसे हमने देखा दादियों के पास आते थे, जैसे ही दादियों के सामने आए हमारे सारे संकल्प स्टॉप हो जाते थे। ब्रह्मा बाबा के, साकार ब्रह्मा बाबा की आपने स्टोरी सुनी होगी कि लास्ट के 2-3 साल, मतलब 67, 68 या 69 बिगिनिंग, तो बच्चे आते थे बाबा के पास तो मन में कई चीजें भर के लाते थे, बाबा से ये पूछूंगा, बाबा से वो पूछूंगा, बाबा से ये कहना है, ये शिकायत करनी है, बाबा से इसका सॉल्यूशन लेना है, ऐसी कई बातें मन में लेके आते थे क्योंकि बाबा तो मिलते भी थे व्यक्तिगत, तो लेके आते थे। बाबा के कमरे में गए, बाबा से दृष्टि ली, बाबा ने कहा आओ बच्चे करके बाबा ने बिठाया, या तो सिर पे हाथ रखा या गोदी में बाबा ने उसका सिर रखा या हाथ पकड़ा, जैसे ही कहा अच्छा बच्चे, कुछ सेकंड बाबा दृष्टि देता था, लंबी दृष्टि भी देता था, अच्छा कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हो, तो क्या जवाब आता था? नहीं बाबा कुछ नहीं। सचमुच उनके मन से सारी चीजें ही भूल जाती थी, सबका सॉल्यूशन हो गया, वो एकदम आत्मा जो भारी होके आई थी वो लाइट हो गई, वो हो जाती थी। दादी जानकी जी कहते हैं कि कोई आपके सामने आवे तो अशरीरी बन जावे, कोई आपके सामने आवे तो अशरीरी बन जावे। कैसे बनेगा कोई अशरीरी हमारे सामने आने से? उस समय हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारी ऐसी अशरीरी अवस्था हो कि हमको देख के वो अशरीरी बन जावे। जैसे गुस्से वाले को देख के लोगों को गुस्सा आ जाता है ना, अभिमानी को देख के मैं भी इसको बता दूंगा और अभिमान आ जाता है, ऐसे हमारी अशरीरी स्थिति को देख के लोग अशरीर, ये प्रूफ है उसका, हम में संस्कार परिवर्तन हुए हैं, हम नई दुनिया नए संसार में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं, ये उसका प्रूफ है, इसलिए करना ही है। तो हम बहुत बहुत गुड विशेष रखते हैं कि आप सभी जो यहाँ पधारे हैं भट्टी करने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल समय निकालकर यहाँ आप आए हैं। तो ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप यहाँ अच्छी तरह से पूरी करके जाएं। और जब आप जाएं, तो जाते ही वहां वालों को अनुभव हो कि ये सचमुच भट्टी में जाके आए हैं। भट्टी में क्या होता है, सोना डालते हैं तो क्या होता है, भट्टी में सोना में से जो भी एलोय होती है, खराबी होती है, वो भस्म हो जाती है और क्या रह जाता है, प्योर सोना हो जाता है, प्योर। तो ऐसे इस भट्टी में, ज्ञान योग की भट्टी में, हम सब आत्माएं ऐसी बाबा की गहन तपस्या में, ऐसी याद में और ऐसी समर्पित बुद्धि हो जाए जो जब यहां से वहां जाए तो वो सब अनुभव करे कि तो आप चेंज हो क्या है, तो चेंज हो क्या है। सबको अनुभव, हमें भी अनुभव हो, खुद को अनुभव हो और वहां वालों को भी अनुभव, तो इसकी सफलता है। और हमारी शुभकामना है कि जरूर वो परिवर्तन होगा। ऐसे ये तपस्या भूमि, ये वरदान भूमि, ये बाबा की कर्म भूमि, ये प्रैक्टिकल परिवर्तन भूमि है जहां हम बैठे हैं, यहां किया हुआ संकल्प पूरा होगा। और हम ये भी याद रखें साथ में एक बार कि हम कहां बैठे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और स्टोरी तो याद है कल्प वृक्ष की, कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो संकल्प करते हैं वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो क्या संकल्प करना है अभी, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा ऐसा संकल्प नहीं करना है, मैं सदा शांत स्वरूप हूं ये संकल्प करना है। नेगेटिव शब्द भी नहीं आना चाहिए संकल्प में, क्योंकि कल्प वृक्ष तो वो सुन लेगा, गुस्सा, ये गुस्सा बोला ना तो फिर गुस्सा दिला देगा, वो नई शब्द याद नहीं रखेगा, वो गुस्सा शब्द ही याद रखेगा। इसलिए मुझे, मैं सदा शांत हूं, मैं सदा स्वस्थ हूं, मैं सदा खुश हूं, मैं सदा सहयोगी हूं, मैं सदा योगी हूं, पॉजिटिव 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 संकल्प करे तो वही चीज कल्प वृक्ष हमें दे देगा सदा के लिए। दादी जानकी जी कहती थी कि चाय पीते समय कभी ये संकल्प नहीं करना होता है या नहीं आता है मुझे कि कहीं ये चाय कपड़ों पे गिर गई तो, क्योंकि अगर वो संकल्प भी आ गया ना तो महीना 15 दिन में एक बार गिर ही जाएगी कपड़े पे, कहीं ठोकर लग गई तो ऐसा भी नहीं बोलना है, ऐसा भी नहीं। ये सब संस्कार परिवर्तन की निशानियां है कि हमारे संस्कार पॉजिटिव हो गए हैं, नई दुनिया के लायक हो गए हैं, उसकी निशानियां कि अभी हमारे शब्द हमारे संकल्प में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, संपूर्ण पॉजिटिव। वहां आप विमान में बैठे, सतयुग में विमान कैसे चलेंगे, विमान संकल्पों से चलेंगे, सतयुग के विमान। आप विमान में बैठे कहीं जा रहे हैं और सोचा अरे कहीं टकरा नहीं जाए, अरे कहीं टकरा गया तो, ऐसा संकल्प आया तो क्या होगा, टकरा जाए। मतलब इतनी पॉजिटिविटी अभी चाहिए। ये संस्कार परिवर्तन का प्रूफ है कि अपने विचारों को टोटल पॉजिटिव बनाना, तो आप समझना कि संस्कार परिवर्तन हो गए। टोटल पॉजिटिव ये चेक कर सकते हैं आप कि मेरे विचारों में टोटल पॉजिटिविटी आ गई है, तो ये संस्कार परिवर्तन का प्रूफ है। थोड़ा गहराई से चेकेंगे, महीनता से चेकेंगे, महीन बुद्धि से करेंगे तो हो जाएगा। और निश्चय करके ही जाना है, ये निश्चय है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, यही लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए सर्टिफिकेट अभी लेना है। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। तो हिमाचल मंडी वाले, इस भट्टी वाले तो सभी सर्टिफिकेट लेंगे ना, सबका फिक्स है। एक हाथ की ताली बजा के भाई जी को एश्योर करेंगे।